के दूसरे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी का जो सेशन होने जा रहा है उसका टॉपिक है हाउ टू मेजर द डेप्थ ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। और इस टॉपिक को लेने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं आदरणीय मुकुल भाई जी। मुकुल भाई जी वैसे तो कलकत्ता से हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय वो पुणे में हैं और पुणे में वॉक्सवैगन कंपनी में ट्रेनर के रूप में कार्य करते हैं। वो 20 साल से ज्ञान में चलते हैं और स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर है। और आप सभी जानते हैं कि राजयोग के रिसर्च के अंतर्गत
देखेंगे विशेष स्पार्क ऑफिस से श्रीकांत भाई जी का ये इशारा था कि मेजरिंग द डेप्थ ऑफ मेडिटेशन, उसके साथ साथ हम जो टॉपिक लेते हैं राजयोग मेडिटेशन के लिए किस प्रकार का टॉपिक लिया जाए और उसके जो हम रिसर्च के स्टेप्स बनाते हैं हमारे आध्यात्मिक रूहानी रिसर्च का, वो स्टेप्स किस प्रकार सा सुचारू रूप से किया जाए उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बातें करेंगे पहले हिस्सा 45 मिनट्स, उसके बाद मेजरिंग द डेप्थ ऑफ मेडिटेशन और तीसरा चीज जो हम सभी ब्रह्मावत्सों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और वो है कैसे हम हमारे, एक तो मेजर करना लेकिन कैसे हम हमारे खुद के योग की स्थिति को गहरा बना सकें, तो उसका हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके पीछे जो थ्योरी है उस थ्योरी को भी थोड़ा सा हम लोग आपस में मिलकर समझेंगे। तो हमारे आज के जो फर्स्ट वाला हिस्सा है राजयोग रिसर्च रिलेटेड, तो हमारे बीच मनोविज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र के भी भाई बहने हैं और कुछ रिसर्च से डायरेक्ट जुड़े हुए भाई बहने हैं। तो हम आपस में हम लोग हमारे चार जजेस को ऊपर बुलाएंगे, सुमलता बहन जी, सुशील भाई, हमारे कल्याण के भाई जी और भाई साहब आप ऊपर आ जाएं प्लीज। रिसर्च मेथोडोलॉजी में अर्थात हम लोग किसी भी बात पे जब शोध कर रहे हैं तो उसके कुछ गाइडलाइंस दुनिया के हिसाब से बने हुए हैं कि किस तरीके से उस बात को हम आगे लें या पेश करें। आप में से जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या उसके आगे लेवल पे इस बात को स्कूल कॉलेजेस में विशेष रूप से यूनिवर्सिटीज में इसका तो चर्चा है ही। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसके मोटे मोटे रूप से कुछ स्टेप्स देख रहे हैं कि एक है आपके जो रिसर्च पेपर बनता है रिपोर्ट के ऊपर पहले कुछ लिखते हैं वो है टाइटल कैसा हो, दूसरा है कि उसका भूमिका थोड़ा रहे स्पष्ट रूप से कि क्यों वो बात इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, दूसरा तीसरा है रिसर्च स्टेटमेंट या कुछ अगर हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं हाइपोथेसिस है वो बात वहां रहे, चौथा है विधि अर्थात उस चीज को हम कैसे क्रियान्वित करेंगे उसकी स्पष्टीकरण, पांचवा है जब हम उस विधि को प्रयोग कर रहे हैं उस विधि को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस गैदर करते हैं। तो ये हो गया रॉ डेटा कलेक्शन अर्थात एक एक व्यक्ति के मेडिटेशन का अगर कुछ आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन पे बैठ रहे हैं आप कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन को आप समराइज कर रहे हैं या कैप्चर कर रहे हैं जो फॉर्म में, वो हो गया रॉ डेटा कैप्चरिंग। नेक्स्ट है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया, सोचिए 30 लोग 50 लोग 60 लोगों के ऊपर प्रयोग करके उसके पश्चात उस चीज का एनालिसिस करना, कुछ जगह पे कोरिलेशन निकालने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल विधियों को अजमाना और उसके कुछ फाइनल रिजल्ट्स पर, निष्कर्ष पर आना, और उसके साथ साथ रिसर्चर यानी अगर आपके टीम जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्चर फिर अपना विचार इन्फर करें कि भाई आगे क्या करना चाहिए इसको लेकर और हमें क्या प्राप्त हुआ। तो ये हो गया मोटी मोटी बात रिसर्च के जो रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं वो स्ट्रक्चर करने के लिए, जिसके ऊपर इसके पहले भी कई सत्र हुए हैं और ये उपलब्ध भी हैं। प्लस आपके सेंटर पे कोई ना कोई ऐसे भाई बहन मिल ही जाएंगे जो आपको इस चीज पर, इस लौकिक एरिया के जो चीजें हैं उसको गाइड कर सकेंगे। लेकिन हम विशेष आज उस रूहानी बात पर फोकस करेंगे कि टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि हम जो रिसर्च के टॉपिक लेते हैं वो किस प्रकार का विषय लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कौन बैठे हैं? स्पार्कलर्स रिसर्चर्स, किसी ने आंसर दिया ब्रह्मा कुमारी, बहुत अच्छा लगा। हम सबसे पहले ब्रह्मा वत्स हैं और उसके बाद रिसर्चर हैं, इस बात को हम ना भूलें। हम पहले बाबा के बच्चे हैं और उसके बाद रिसर्चर हैं। दुनिया के रिसर्चर और बाबा के बच्चों में थोड़ा सा ये अंतर है। तो रिसर्च के जो विषय आप लेंगे, अगर ऐसे विषय हो जिस विषय में हमारे स्व उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो, हमारे साथ के भाई बहनों का प्रोग्रेस हो, उनके संस्कार बाबा जैसे चाहते हैं वैसे बनने में मदद हो, ऐसे टॉपिक्स अगर हम लेते हैं तो हमें करने में भी बहुत अच्छा उमंग उत्साह बना रहेगा। साथ में हमारे सेंटर लेवल के जो भाई बहने हैं, निमित इंचार्ज बहन जी हैं, उन्हों से भी प्रोत्साहन मिलेगा और यज्ञ के सीनियर से भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बाबा का जो कार्य है उसी कार्य अनुसार उसी दिशा पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसे कोई टॉपिक लेते हैं जहां ज्ञान की कोई सत्य को प्रूव करने वाली बात हम लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ज्ञान की सत्य जो है वो बाबा स्वयं प्रूफ कर रहे हैं। वो अगर हम रिसर्च के थ्रू प्रूफ करने जाएं और हम ठीक से कर नहीं पाए तो फिर क्या होगा, डिससर्विस होने की संभावना है। तो इसके लिए कुछ बातें हैं, इसको हमें समझना है। विशेष रूप से हम बाबा के बच्चे जब कर रहे हैं, स्व उन्नति से रिलेटेड पॉइंट्स हम अवश्य लें, जहां पे ब्राह्मण है, योग की क्वालिटी इंप्रूव हो, धारणाएं इंप्रूव हो, ऐसे विषय हम अवश्य ले सकें। साधारणतः ये रिसर्च में तीन एरियाज दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन है, कनेक्शन है, और तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर आप आग में अपने उंगली को डालेंगे तो क्या होगा, तो हाथ जलना किस लिए हुआ, आग कारण है और हाथ जलना उसका नतीजा है। तो ये हो गया कॉज इज द फायर एंड हाथ जलना इज द इफेक्ट। तो इसी प्रकार से स्पष्ट रूप से ये कॉज का ये इफेक्ट है, लेकिन कई जगह पे डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट ऐसे रिलेशन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि और भी कई चीजें होते हैं। तो वहां पे कई बार कोरिलेशन की ये चीज, अच्छा अगर हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो हमारा मार्क्स ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, इस तरफ से कुछ दूसरा बताइए प्लीज, जरूरी नहीं है, संभावना है। अच्छा बहुत अच्छा, जरूरी नहीं है, इधर से बोल रहे हैं बहन जी कम पढ़ के अच्छा मार्क्स लाई है, बिल्कुल हो सकता है, आपकी एकाग्रता के ऊपर है। और कितना घंटा आप बैठे हैं वो गारंटी नहीं करता कि आप पूरा टाइम एकाग्रचित होकर पढ़ पा रहे हैं। रिटेंशन कितना है, रिकॉलेबिलिटी कितना है, हमारे अंडरस्टैंडिंग कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन थंब रूल हम कह सकते हैं कि अगर हम ज्यादा समय पढ़ रहे हैं तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, सो दिस इज समथिंग विच इज कोरिलेशन। दिस इज बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि कितना क्वालिटेटिव आप एकाग्र कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स नहीं। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहें, दो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दोनों स्टूडेंट की बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उनकी आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट अर्थात बुद्धिमत्ता सिमिलर रेंज के हैं, उनों का अटेंशन स्पैन अर्थात बुद्धिमत्ता में 14 अलग अलग बातें नापा जाता है, उन दोनों का अटेंशन स्पैन सिमिलर है, दोनों का बुद्धिमत्ता सिमिलर रेंज पे है, और दोनों का विकास, बौद्धिक विकास और उम्र, यानी क्लास 2 और क्लास 8 के बच्चे को साथ में नहीं बिठाए हैं लेकिन सेम टाइप के बच्चे को बिठाए हैं। अब एक बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा आवर्स पढ़ रहा है, और दूसरा बच्चा उसका आधा आवर्स पढ़ रहा है। कैन वी से कि जो ज्यादा पढ़ रहा है इस एग्जाम्पल में को कंसंट्रेशन कहा जाता है। हाँ, तो दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों का सब्जेक्ट में रुचि है, उसी सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे हैं, दोनों का कंसंट्रेशन स्पैन पिछले जन्म में वो कौन सा टीचर के साथ खिटपिट किया होगा, उसके पास ही पेपर चले जा रहे। नाउ दीज आर, देखिए कितने सारे वेरिएबल्स हो रहे हैं ना, कितने सारे चीजें एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट कर नहीं सकते, जैसा आग में हाथ डाला और हाथ जल गया, ऐसे एक चीज से अच्छा मार्क्स आ गया ऐसे कहना मुश्किल है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लेकिन देयर कुड बी अ कोरिलेशन, राइट। तो इस प्रकार के अलग अलग स्टडीज होते हैं, तो जहां पे मोर देन वन रीजन है, अमृत वेला फ्रेश होके उठना किस चीज पर डिपेंडेंट है? रात को कितना बजे सोए हो, रात को खाना कितना खाए हैं, रात को बाबा को चाट ठीक से दे के सोए हैं या नहीं, आपके शरीर में पानी कितना है, डायबिटीज है या नहीं, हाई बीपी है या नहीं, बहुत कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा आपका फ्रेशनेस, आपके इंडिविजुअल मोटिवेशन लेवल कितना है उठने का, कितना वो फुरना है, राइट। इवन बीमार होकर भी वो फुरना से हम उठ सकते हैं अगर वो मोटिवेशन लेवल, बहुत सारी चीजों पर। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे फिर कोरिलेशन स्टडीज होगा। ये बात तो स्पष्ट है ना, कॉज एंड इफेक्ट और कोरिलेशन, राइट। नाउ जैसे हमने बताया कि वी शुड टेक टॉपिक्स ऑफ बीके इंटरेस्ट एंड रेलेवेंस, अब हम आपके सामने 6 टॉपिक्स रखे हैं। हम ये जानना चाहेंगे पीछे के रो से ये पढ़ने को आ रहा है, इज इट रीडेबल? ग्रेट, ग्रेट, ओके। यहां पे 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब आप स्पार्कलर सज्जनों से ये निवेदन है, इसमें से बताइए कि अभी तक हम लोग जो चर्चा किए कि हम ऐसे टॉपिक ले जहां पे डिस्प्यूट कम रहे, जो स्व उन्नति से रिलेटेड हो, इस बात को ध्यान रखते हुए राजयोग लैब से रिलेटेड इन 6 में से कौन सा टॉपिक हम लोगों को लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो हम ऐसे करेंगे, हम 1 से 6 काउंट करेंगे एंड आप लोग हाथ उठा के यस करेंगे, ठीक है। और जिनका, जिनको लगता है कि ये नहीं लेना चाहिए तो वो फिर हाथ नहीं उठाएंगे, ओके। रेडी, एक एक करके देखते हैं। पहला टॉपिक है फीलिंग फ्रेश एट अमृत वेला। ओके, ठीक है, मेजोरिटी उठा रहे हैं हम लोग, मेजोरिटी से ही जाएंगे क्योंकि एक एक करके तो रिसर्चर्स कभी इकट्ठा नहीं हो होंगे, माना एक सहमत सिर्फ शिव बाबा पर सहमत होंगे, इसके अलावा रिसर्चर्स सब सहमत नहीं होंगे। दूसरा, मेडिटेशन विथ व्हाइट लाइट वर्सेस रेड लाइट, अर्थात हम लोग योग में लाल लाइट का इस्तेमाल करते हैं परमधाम की एम्बियंस देने के लिए, और कभी व्हाइट लाइट में भी बाहर तो रेड लाइट नहीं रहेगा, तो रेड लाइट में योग अच्छा हो सकता है या व्हाइट लाइट में योग अच्छा हो सकता है, इस पर रिसर्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, एक मिनट एक मिनट, जो कहते हैं होना चाहिए वो खड़े हो जाए। अभी एक दूसरे को देख लीजिए, आप कितने हैं, 450 में से कितने हैं, बैठ जाइए, थैंक यू। सो 425 भाई बहने भाव को समझ पाए हैं। ओके, अभी जो उसके मतलब जो खड़े हुए हैं, क्या वो भाव को नहीं समझ पाए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग बहुत उत्साही हैं ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन सोचिए रेड लाइट व्हाइट, मैं ये जजेस को पूछना चाहूंगा इस पर आपका विचार क्या है इस पॉइंट पर। माइक इज पॉइंट टू, आ गया अभी चेक, वॉल्यूम हैज कम, में चेक कीजिए।
ओम शांति। मेडिटेशन एक होता है ज्वालामुखी योग, और एक होता है बाबा के साथ बुद्धि योग रख करके अपने काम करना। अगर सेंटर पे योग कर रहे हैं तो लाल लाइट होता है, प्रश्न ही नहीं है, दीदी भी होती है, कमेंट्री होती है, सारा वातावरण आवश्यक अनुसार होता है। लेकिन कर्मक्षेत्र पर लाल लाइट नहीं होगा, चल रहे ट्रेन में तो वहां तो व्हाइट लाइट ही होगा, है ना। तो हमें परमधाम की वासना के लिए सेंटर पे अनुभूति के लिए लाल लाइट की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन 8 घंटे का योग अगर रखना है या बाहर जाके कर्म क्षेत्र करते योग करना है तो वहां पर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार हमें अपना बुद्धि बाबा के साथ रखना होता है। तो हर्डल ये ना आए कि लाल लाइट नहीं तो मैं अभी कैसे योग करूं, इसलिए मैं व्हाइट लाइट में भी योग करने की आवश्यकता है या प्रैक्टिस करनी होती है।
ओके, मुद्दा यह था कि करना है या नहीं करना है क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यह था सुशील भाई, यस आप लाइट थ्रो करें।
ओम शांति। जैसा मुकुल भाई ने शेयर किया कि टॉपिक हमारा इस टाइप से क्लैरिटी में आए जिससे हमारी स्व उन्नति में फायदा हो, अगर हम जैसे इस टॉपिक में ले रहे हैं व्हाइट लाइट वर्सेस रेड लाइट, तो अगर रिसर्च का हमारे ब्रदर मुकुल भाई ने ऑलरेडी इंडिकेशन शायद इसका आंसर कुछ ऑलरेडी दे दिया था कि अगर वो चीजें अगर हमारी कंट्राडिक्शन में चली जाती हैं तो जैसे कुछ भाई बहनों ने खड़े भी हुए तो उनकी उत्साह वाली सिचुएशन तो अच्छी थी, बट अगर उसका रिजल्ट सपोज करिए हम अगर निकालने लगते हैं और उसमें कुछ जगहों पर ये रिजल्ट निकल के आता है कि नहीं व्हाइट में बेहतर होगा, या तो जो हमारी बाबा की ऑलरेडी डिफाइंड स्टेटमेंट है और जिस तरीके से हम लोग पूरे सभी सेंटर्स पे, जैसे हमारे भाई जी ने भी शेयर किया कि सेंटर्स पे सभी जगह पे रेड लाइट्स में हम लोग करते हैं, तो तो मतलब इस टाइप का टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. दैट्स माय थिंग.
एग्जैक्टली. इफेक्ट ऑफ फूड ऑन माइंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा, ये तो होना ही चाहिए. यस, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. इम्प्रूविंग अटेंशन ड्यूरिंग मुरली. मुरली सुनते समय ब्रह्मा वत्सो पूरा अटेंशन के साथ मुरली सुने, इस पर रिसर्च होना चाहिए. देखिए कितना स्पष्ट है. अच्छा, अब पांचवा, बाबा का बच्चे कौन बनेगा उसका एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी टाइप. क्या इस पर रिसर्च होना चाहिए कि वो पर्सनालिटी टाइप कौन सा है वो पता चल जाए? हाँ या ना, हाथ उठाइए. क्या बात है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एग्जैक्टली. हर एक बाबा का बच्चा बनने का अधिकार है, और बाबा का बच्चा एक पर्सनालिटी टाइप नहीं है, एक ही पर्सनालिटी है, दिल में बाबा को बसाया है, बस वही एक. बाकी हर टाइप के, इंट्रोवर्ट भी बन सकता है, ज्यादा बोलने वाला भी बन सकता है, हर किस्म के व्यक्ति बन सकता है. छठा, आंखें खोलकर योग करना अच्छा है, रिजल्ट असरदार होता है, या आंखें बंद करके योग करना असरदार होता है? इसका प्रूफ ये रिसर्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो समझते हैं होना चाहिए हाथ उठाइए. अगेन आप देख लीजिए, माइनॉरिटी है. ओके, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड टॉपिक है, तो इसके लिए आप, अभी संगम युग का समय बहुत कम है, इसके लिए हम स्वउन्नति के टॉपिक्स पर फोकस करें. ये इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए कि हम लोग जब रिसर्च पर लेते हैं टॉपिक, उसको सब रिसर्च में जब जाएंगे, सब टॉपिक्स लेंगे, तो ये चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं. तो ऐसे ऐसे टॉपिक नहीं लीजिए कि सतयुग में बच्चों का जन्म कैसे होगा. हाँ, इस प्रकार के टॉपिक नहीं लीजिए राजयोग लैब में कि दूसरे जगह पे कहीं धर्म संकट खड़ा हो जाए. ओके, फ्रेमिंग द, तो उसका टाइटल पेज में, ऊपर वाले पेज में कुछ शब्द लिखे होंगे. अब उस शब्द से पता लगना चाहिए कि इसके अंदर मुख्यतः किस बात पर रिसर्च हुए हैं. अब इसमें दो बातें आना चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि, सोचिए एक और उदाहरण लेते हैं, या पहले देख लेते हैं कि एक कोई विषय का असर, एक कोई एक्टिविटी, धारणा या पुरुषार्थ का असर हमारी स्थिति में, या हमारे शारीरिक अवस्था में, या मानसिक स्थिति में, या आध्यात्मिक उन्नति में, या संस्कार परिवर्तन में क्या होता है, इस तरीके से उसका डेफिनेशन होना आवश्यक है, जिसमें रहेगा कि किस चीज का असर, और दूसरा रहेगा किस पर असर. जिस चीज का असर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, अंग्रेजी में एक बहुत डिफिकल्ट शब्द इन्होंने यूज किया है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जिस चीज पर असर पड़ रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है. हम हमारे रिसर्च एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आप हमें एक दो और सरल उदाहरण दें, ताकि इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझ पाए. कुछ घरेलू उदाहरण दीजिए.
एक किसी भी चीज का, वैसे कहा जाता है कि टेम्परेचर घटता है तो बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है. ये तो एक दूसरे का डायरेक्ट असर हुआ. हवा को गर्म करो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये कॉज एंड इफेक्ट में जाएगा. लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दृष्टि से मेरी जो ठंडी हवा जो है उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर घटेगा. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठंडी हवा हुआ और बॉडी का टेम्परेचर उसके आधार पे आया. तो इस प्रकार से हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझ सकते हैं.
तो विनय भाई सोचिए, हम बाबा के कोई पिकनिक प्रोग्राम में पानी पूरी रखा हुआ है और हम पानी पूरी के स्टॉल में गए हैं और हमारे मुंह में पानी आ रहा है, तो पानी पूरी कौन सा चीज होगा और मुंह में पानी आना कौन सा चीज होगा?
पानी पूरी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मुंह में पानी आना डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर पानी पूरी नहीं है तो मुंह में पानी नहीं आएगा।
अच्छा, लेकिन सोचिए उसके साथ गाजर का हलवा भी रखा हुआ है, तो पानी पूरी गाजर का हलवा दोनों स्टॉल है और हमने दोनों को देखा है। अब हमारे मुंह में पानी पानी पूरी के कारण भी आ सकता है, गाजर के हलवा के कारण भी आ सकता है, तो फिर इसको क्या कहेंगे?
इसको इंडिविजुअल चॉइस पे जाएगा, वो ये इंडिविजुअल चॉइस पे जाएगा। किसी को पानी पूरी ज्यादा अच्छी लगेगी तो उसी को देख के आएगा और हलवा ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसको देख के आएगा, पर व्यक्तिगत अने पसंद की के ऊपर आधार है वो।
नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ज्ञान से कोरिलेट करने का कोशिश करता हूं। जैसे ब्रदर ने बोला और उसमें बड़ा सिंपल सा है कि सपोज करिए मेरे को अगर मैं रात में चार्ट रख के नहीं सोया हूं तो मेरे को अगर अमृत वेला अच्छा नहीं होता है उसका इफेक्ट मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रहा है। जबकि हमारे ब्रदर के लिए हो सकता है कि उन्होंने सारा कुछ जो अपने सारा प्लान था और खाने का भोजन का उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, तो इनका अमृत वेला उस तरीके से ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से देयर आर टू वेरिएबल्स जो अलग अलग इफेक्ट, मतलब उसका आउटकम एक ही इफेक्ट है लेकिन किसी व्यक्ति पर कुछ वेरिएबल ज्यादा इफेक्ट करते हैं और दूसरे व्यक्ति पर दूसरा वेरिएबल ज्यादा इफेक्ट करते हैं।
थैंक यू सुशील भाई जी। जैसे आपने स्पष्ट किया कि कई बार दो चीजें सेम रिजल्ट दिलवाता है या दो चीजों का असर सेम रिजल्ट पर पड़ता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं ऐसा, तो इस प्रकार के रिसर्च स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई गुस्सा छोड़ा है योग के आधार से, गुस्सा कम किया है, गुस्सा का संस्कार कम हुआ है योग का आधार से, किसी का गुस्सा योग के आधार से नहीं हुआ है, वो योग दिखता ही नहीं है करता है या उतना योगी तो आत्मा खुद ही बोलता है मैं उतना योग नहीं कर, लेकिन मुरली के प्रति बहुत लगन है, बाबा के महावाक्य पर बहुत लगन है। बाबा ने कहा बच्चे दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, इस बात को उन्होंने दिल पे धारण कर लिया और उन्होंने चल पड़ा। तो यहां परिवर्तन किस आधार से हुआ? योग के आधार से, ज्ञान के आधार से। पर कुछ भाई बहनों में योग के आधार से भी गुस्सा चेंज हो सकता है। अब जो व्यक्ति ज्ञान योग दोनों कर रहा है फिर क्या होगा? गुस्सा कैसे छूटा? योग से छूटा, ज्ञान से छूटा? ये तो डिफिकल्ट है, दोनों का संमिश्रित असर भी पड़ सकता है। तो ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं, लेकिन जब आप स्पार्क प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं और अगले 6 महीना के बाद अगर हम चाहते हैं कि श्रीकांत भाई मुस्कुराएं, तो हमें प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो टॉपिक के कोरिलेशन बहुत स्पष्ट रूप से हो, वेरिएबल्स डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट टाइप का अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा रिसर्च के लिए।
मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ?
प्लीज सुमलता बहन।
हैदराबाद से हमने जो सीड्स की ग्रोथ के ऊपर हमने जो एक रिसर्च से कोलैबोरेट होकर के हमने जो रिसर्च किया था, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ किसी के डिपेंडेंट नहीं है वो इंडिपेंडेंट है, बाकी ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है। योगदान हम दे रहे हैं तो बिना योगदान के सीड्स का ग्रोथ कितना है, योगदान वाले सीड्स का ग्रोथ कितना है, वो डिपेंडेंट है योगदान के ऊपर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिपेंडेंट कह सकते हैं और डिपेंडेंट मतलब ग्रोथ ऑफ द सीड्स, ये एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ।
राइट, थैंक यू। अभी हम आपके सामने ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स रख रहे हैं, जैसे पहले हम लोग 6 बातें देखे कि कौन सा रिसर्च पे टॉपिक लेना चाहिए, कौन सा उतना ठीक नहीं है स्पार्क के हिसाब से। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं कि रिसर्च का पहला पन्ना में, पहला पेज में जो लिखत रहेगा वो कितना स्पष्ट है। तो हम सबसे पहले आप सभी से पूछेंगे कि ये स्पष्ट है या नहीं है, और फिर हम लोग जजेस से सुनेंगे कि ये कहां तक ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब विषय ठीक है या नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो लिखत है वो स्पष्ट है या नहीं। तो पहले बताइए, यहां लिखा है वेज एंड मीन्स टू मेक ग्रेट अमृत वेला, अमृत वेला को बहुत सुंदर शक्तिशाली बनाने के लिए तरीके, ये टॉपिक स्पष्ट है बात या स्पष्ट नहीं है। जो समझते हैं स्पष्ट है वो हाथ उठाइए। हाँ थैंक यू, हमारे जूरी थोड़ा बताएं ये स्पष्ट है या नहीं। भाई साहब
ओम शांति, डिसीजन आपको लेना है। अमृत वेला ग्रेटी होती है, अमृत वेला ग्रेटी होती है, हमें अनुभूति क्या होगी उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये सोचना है। हम ये सिद्ध नहीं करने जा रहे अमृत वेला ग्रेट है क्या, अमृत वेला ग्रेट है, हमें कितनी अनुभूति हुई वो ग्रेटनेस के कितने नजदीक है ये हमें सिद्ध करना है। अगर हमने 5 जन का ग्रुप बनाया उनमें से 3 जन ने कहा कि अमृत वेला ग्रेट नहीं है तो अमृत वेला रिजल्ट गलत। सत्यम शिवम सुंदरम जो कहते हैं ना, कुछ ट्रुथ है, उस ट्रुथ को हमें टच नहीं करना है रिसर्च में। बाबा ने कहा अमृत वेला शक्तिशाली है तो अमृत वेला शक्तिशाली है, हम उसकी शक्तिशाली अवस्था के कहां तक नजदीक पहुंचे हैं वो स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह के स्टेटमेंट लेकर के हमें रिसर्च नहीं करना होता है।
दूसरा चीज विनय भाई, इस पर थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा है ये स्टेटमेंट,
इसमें हम मेजर कैसे करेंगे उसको, ग्रेट है कि नहीं है, मेरी अमृत वेला ग्रेट है कि नहीं, वो कैसे मापेंगे, उसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड हमको दिया नहीं गया है। किस आधार पे मैं कहूंगा कि ये अमृत वेला ग्रेट है, तो मेरे पास उसके वेरिएबल्स के दूसरे कोई वेरिएबल है ही नहीं।
अंग्रेजी में एडवर्ब जो है, हाँ जी फॉर मी ओके। सो इस टॉपिक अधूरा है एक्चुअली, और इसलिए अधूरा है कि जैसे उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेट शब्द जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे शब्द हमारे सुपर एक्सीलेंट वेरी गुड इस प्रकार के एडजेक्टिव्स कोई मेजरेबल नहीं हो सकता है। व्हाट इज सुपर, व्हाट इज एक्सीलेंट, व्हाट इज ग्रेट, सो वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज ग्रेट अमृत वेला, अमृत वेला का स्पेसिफिकेशन देना होगा कि 2 बजे फ्रेश होके उठना क्या ये ग्रेट अमृत वेला का लक्षण है, 2 से 5 अगर हम बैठ सकते हैं हा? तो ये ग्रेट शब्द का कोई किसी के लिए 3:30 बजे उठना ग्रेट है। हाँ जी 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 बिल्कुल वही भाई साहब यहां से बता रहे थे अमृत वेला फॉर मी ये ऐड करने के लिए कह रहे थे राइट। अमृत वेला तो अच्छा ही है लेकिन अमृत वेला में हम कितने अनुभव कर रहे हैं राइट, नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट। तो आपके सामने यही रखा जा रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स रखा जा रहा है ताकि हम कुछ वेरी गुड एग्जाम्पल्स देखे, नॉट एट ऑल गुड एग्जाम्पल्स देखे, बॉर्डर लाइन एग्जाम्पल्स देखे, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे विषय को जब हम लिखेंगे तो कैसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। हाँ जी ये है लिखा हुआ है डेवलपिंग बाप समान स्पिरिचुअल स्टेज, बाप समान आध्यात्मिक स्थिति बनाना, ये रिसर्च टॉपिक का पहला पन्ना में लिखा है। तो क्या ये रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल हो सकता है, जो समझते हैं यस वो हाथ उठाइए। बहुत कम 15 लोग हाथ उठाए हैं। अच्छा जो समझते हैं नहीं हो सकता है रिसर्च टॉपिक, क्यों नहीं हो सकता है कोई एक बताएं। ऑलमाइटी, अच्छा बाप समान के बदले ऑलमाइटी, तो अगर हम डेवलपिंग ऑलमाइटी स्पिरिचुअल स्टेज तो ये ठीक होगा, बाप समान स्टेज, अच्छा ठीक है स्पिरिचुअल शब्द निकाल देना है तो ठीक रहेगा, बाप समान स्टेज। हाँ जी एग्जैक्टली ये किताब का पन्ना हो सकता है, कलरफुल बुक बना है उसके लिए ठीक है, बट रिसर्च में बाप समान हैज टू बी डिफाइंड।
कुछ बताना चाहेंगे सुशील भाई इस पर?
अगेन मुकुल भाई ने इशारा पूरा क्लियर दे दिया और बहन जी ने जो खड़े होके बोला वो भी क्लियर है कि जब तक हमारी बाप समान की स्थिति को हम किस किस चीजों को लेकर हम उस स्थिति को मीजर कर पा रहे हैं तब तक कि हमारा आर्टिकल वेग रह जाता है। आर्टिकल का नाम जो है वो बहुत प्यारा है बट हम इससे अपनी स्थिति में ही क्या परिवर्तन आए अगर हमें स्वयं को नापने हो तो वो मुश्किल पड़ेंगे, तो अस्पष्ट है।
वैसे भी हम लोग 18 जनवरी के मेल्स जो आते हैं उसमें बाप समान 18 कदम, तो 18 के 18 मेजरमेंट्स लेंगे, कई जगह 19 भी आते हैं, कई जगह 10 और 10ों 10 के 10 10 वेरिएबल्स भी देते हैं अलग अलग, कभी 10 कदम माने 10 एक कदम के 10 पॉइंट्स देते हैं, तो ये इतना स्पष्ट नहीं है। किसी एक परिस्थिति को लेके अगर देखते हैं तो वो अन्य टॉपिक बन सकता है।
अगर इसका फ्रेमिंग ऐसा होता है बाप समान ऑन दीज 10 एस्पेक्ट्स और वो आप 10 एस्पेक्ट डिफाइन करते हैं, क्या हमारा डेफिनेशन ऑफ बाप समान इज आई एम टेकिंग केवल ये 10 एस्पेक्ट ब्रह्मा बाबा का, देन इट इज फाइन, देन इट इज मच मोर प्रेसाइज। राइट नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है इसका अगर हम हिंदी करें तो इसका मतलब ये है ऐसे कुछ मानसिक अभ्यास जिसके द्वारा अमृत वेला में एक ग्रोन अप व्यक्ति सुबह 4 बजे अमृत वेला में अल्फा वेव्स को मेंटेन कर सके, मेंटल एक्सरसाइज टू कीप अ पर्सन विथ अल्फा वेव्स ड्यूरिंग अमृत वेला। ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। राइट सो हमें फिर इससे क्या सीखना है कि हमारा जो रिसर्च स्टेटमेंट है इट हैज टू बी क्रिस्प बट इट शुड एक्सप्लेन द होल थिंग। राइट आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कैसा है। देखिए correlation of complete fruit diet फल आहार on aggressive behavior of individuals, फलाहार का एग्रेसिव बिहेवियर आक्रमणात्मक व्यवहार के ऊपर क्या असर प्रभाव, कौन सा? हाजी correlation, हाँ जी कोरिलेशन है, हाँ हाँ प्रभाव नहीं आएगा इफेक्ट नहीं आएगा, यस कोरिलेशन यस। हाँ जी इस पर हाथ उठाइए, ये 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 रिसर्च स्टेटमेंट स्ट्रक्चरिंग ठीक है या आप लेंगे या नहीं वो बात नहीं हो रहा है, वी आर कैलिब्रेटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग कि ये रिसर्च स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, नहीं है। अच्छा जो समझते हैं है वो हाथ उठाइए, अच्छा जो समझते हैं नहीं है वो हाथ उठाइए, अच्छा बहुत सारे लोग दोनों में हाथ नहीं उठा रहे, यानी आप बिल्कुल फ्रूट खाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा समझे या क्या है? इसमें कहा जा रहा है फल आहार का व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति का आक्रमणात्मक व्यवहार के ऊपर क्या कनेक्शन है, वो यस तो ठीक है ना, कोरिलेशन स्टडीज भी होते हैं उसमें कोई गलती नहीं है। बाय द वे कोरिलेशन शब्द में अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो आपको यह स्पष्ट कर दे कोरिलेशन शब्द यहां पे जिस रूप से यूज हो गया है वो परफेक्ट है, उसमें गलती नहीं है कहीं। आपको उसके बाद से ढूंढना है, फ्रूट से लेकर इंडिविजुअल तक। नहीं तो यहां रिसर्चर लिया है आपको, आप सोचिए पेपर चेक करने गए हैं, आप उनका टॉपिक तो चेंज नहीं करेंगे, है ना। कोई बच्चा या बच्ची बहुत उमंग उत्साह से ये टॉपिक लिया है, हम तो उसका टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। हमें चेक करना है कि ये टॉपिक फ्रेमिंग ठीक है या नहीं। नहीं बोलना चाहिए, क्या बोले फिर? हाँ हाँ जी, हाँ एक्सेलेंट। सो कोरिलेशन बिटवीन, ओके, उसके बाद कंप्लीट फ्रूट डाइट ऑन एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हम जजेस को पूछेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है फ्रूट के ऊपर। हाँ जी,
ये प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे बनाया जाता है ये हमें सीखना है, इसलिए कुछ टाइटल कंफ्यूजन स्टेट में गलत दिखाए जा रहे हैं, उनको आपको करेक्ट करना है। तो जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मुकुल भाई आपका अभिनंदन कि सोच जारी है, कोरिलेशन फ्रूट डाइट अग्रेसिवनेस, इस तरह का काम हम रिसर्च में करना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन पहला ये है कि इस तरह के स्टेटमेंट हम बना के रिसर्च में आगे बढ़े कि नहीं। हाँ तो मेजोरिटी हाथ हिला के नहीं बोल रहे, मतलब
क्यों
क्यों
नहीं। यहाँ विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर? फ्रूट डाइट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? एग्रेसिव बिहेवियर। और कोरिलेशन ऑफ के बदले कोरिलेशन बिटवीन हो सकता है ना? यस, सो दिस इज वर्केबल। हाँ स्टेटमेंट इज वर्केबल। Measuring my spiritual progress on the basis of what? Yes, this is the vague. Yes, this is a statement. So this can't be. इसका कुछ ना कोई independent variable clear नहीं है. Meditation as medicine. ये topic होना चाहिए. नहीं ये पुस्तक होना चाहिए. लेकिन meditation as medicine मतलब क्या? कौन सा मेडिसिन, कौन सा बीमारी का मेडिटेशन? सपोज इफ यू से मेडिटेशन टू एलिविएट द स्टेट ऑफ डिप्रेसिव न्यूरोसिस इन एडल्ट्स या इन एडोलेसेंट्स, तो स्टेटमेंट पूरा होता है। कॉज क्या है? माना आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेडिटेशन का अभ्यास, डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिएक्टिव डिप्रेशन अर्थात डिप्रेसिव न्यूरोसिस जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं। मेडिटेशन एज मेडिसिन, ये तो मेडिटेशन कौन सा है वो स्पष्ट नहीं है, मेडिसिन कौन सा है वो स्पष्ट नहीं है, और मेडिसिन किस चीज का मेडिसिन है, तो ये बहुत वेग है, इस प्रकार का टॉपिक नहीं है। हाँ जो अगर कोई एक बीमारी है, हाँ सुशील भाई वुड लाइक टू रेस्पॉन्ड। यस, इनफैक्ट सुशील भाई इन मास से हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के रिसर्च के जो हमारे भारत के नींव है उस स्थान से है। ये
मुझे बहन के स्टेटमेंट पे तुरंत याद आ गया। इसमें सबसे पहले तो मैं स्पिरिचुअल स्टेटमेंट देना चाहूंगा। देखिए बाबा किस तरीके से टच कराता है, बिकॉज अभी हमारा लेटेस्ट डिस्कशन दिल्ली में चल रहा है। हमारी एक ज्ञान में बहन है और ममता बहन करके नाम है, वो MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो जो बहन ने बोला मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए कितना जल्दी टच किया है, और उसमें यही टॉपिक हम लोग लेने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन भी डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज मैं जैसे भाई जी ने कहा हम लोगों के यहां कुछ रिसर्च आर्ट ऑफ लिविंग पे भी चल रहा है, तो मतलब अफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन MDD पेशेंट्स, सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पेशेंट्स। अब उसमें उन्होंने मतलब टॉपिक यहां बहुत बड़ा नहीं ले सकते जैसे आप लोग पिछले वाले की बात कर रहे थे, बट उन्होंने फिर MDD भी डिफाइन किया है कि MDD मीन्स वो लोग, वो व्यक्ति जो कम से कम एक बार सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुका है. तो एमडीडी को भी डिफाइन किया है, मेडिटेशन के भी राजयोग मेडिटेशन को डिफाइन किया है. तो या उसमें अभी हम लोगों ने थोड़ा सा अभी हमने डिफाइन नहीं कर पाए हैं बिकॉज अभी वो डिस्कशन में चल रहा है. क्योंकि कम से कम 12 या 13 दिन पहले की बात है, एफएम में आ रहा था एज ग्रुप 19 to 35 मैक्सिमम अटेम्प्ट आ गए हैं. तो देखिए कितनी बड़ी सेवा की राजयोग मेडिटेशन के रिसर्च के द्वारा संभव है. तो मैं 3 पॉइंट कहूंगा इसमें, जो भाई जी ने अभी तक अपने डिस्कशन में एक्सप्लेन किए वो तीनों आ जा रहे हैं. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेवा का इवन जो लोग हमारे ज्ञान में नहीं है उनकी भी उन्नति में असर, और साथ के साथ आउटकम्स, क्लियर आउटकम्स, क्लियर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स.
तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग हो जाता है. जैसे यहां पे दिया गया है कि 15 मिनट मुरली के पूर्व योग का असर बीकेस का मुरली सुनने का अटेंशन पर कितना है. तो यहां पे अटेंटिवनेस ऑफ बीकेस ड्यूरिंग मुरली क्लास, अटेंटिवनेस इज द डिपेंडेंट एंड 15 मिनट योग का प्रयोग जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम ठीक से स्टेटमेंट फ्रेमिंग करते हैं टॉपिक, तो हमारा दो काम बहुत आसान हो जाएगा. पहला काम यह है कि हम उसके बाद उस विधि को जो बनाएंगे, उसको करने का जो विधि बनाएंगे, वो विधि बनाना आसान होगा. और दूसरा उसको मूल्यांकन करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, कैप्चर करना, रिकॉर्ड को बनाना, क्वांटिफाई करना, रॉ डेटा को एसिमिलेट करने का जो पद्धति रहेगा वो भी हम स्पष्ट रूप से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट. अब हम दूसरा विषय पर जा रहे हैं जो आज का मेन टॉपिक है, वो है डेप्थ ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन का गहराई, योग का गहराई कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है. तो हम दो वॉलेंटियर्स को बुलाना चाहेंगे, हमारे दो वॉलेंटियर भाई आएंगे यहाँ और हमें आ जाइए. यस, नहीं नहीं बैठिए. सो हमारे साधारण रूप से अगर कोई पूछे, सोचिए बड़ी बहन जी छोटी बहन जी को, यहाँ 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 सामने, बड़ी बहन जी छोटी बहन जी को कहती है कि भाई जाओ बाबा के रूम में जाओ बैठो, लाइट से हट के बैठो, दिखाई नहीं देगा ना ऑडियंस को, ऑडियंस को दिखे ऐसे बैठो. हाँ. आपको दो चश्मे वाले जो हमारे भाई हैं, ये दोनों भाइयों को देखना है. ओके, अब ये भाई योग कर रहे हैं बाबा का रूम में, और आपको बहन जी ये कह के भेजी है कि भाई देखो अगर वो योग कर रहा है ठीक से, गहरा योग में है, तो इनको उठाना नहीं, और अगर वो ऐसा बैठा है तो उनको बुलाओ, थोड़ा जल्दी काम है. अब आपको ये दोनों में से एक भाई को उठाना है, वो चश्मा वाला भाई और ये चश्मा वाला भाई, दोनों में से एक को, दोनों को गौर से थोड़ा देखिए किसको आप उठाएंगे. भाई चश्मा वाला भाई जो जो बताया हुआ वो करते रहो. क्यों क्यों उठाएंगे? लेकिन वो बाबा के याद में सर को खुजल रहा है. हम लोग बहुत सहज रूप से किसका योग लगा है और किसका योग नहीं लगा है ढूंढ के निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं. लेकिन अगर उसको वैज्ञानिक रूप से करना हो, जैसे सुशील भाई के ऑफिस में अगर ये काम दिया जाए तो सुशील भाई को 2 करोड़ का मशीन लगाना पड़ेगा या उससे भी ज्यादा, हाँ, ये चेक करने के लिए किसी का योग ठीक से लग रहा है या नहीं लग रहा है. लेकिन बाबा के बच्चे सरल रूप से उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ये अंदाजा कर सकता है. नाउ डेविस हस्बैंड नाम के एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक ऐसे कुछ लक्षण बोले हैं मेडिटेशन पे, योग के अंदर किस प्रकार के लक्षण होते हैं कि योग के गहराई पे जा रहे हैं. जिसका पहला लक्षण जिसने हम लोगों ने देखा कि वो ये था कि हमारे बॉडी मूवमेंट्स, शरीर का हिलना कम हो जाना, ये पहला लक्षण है. ये पहला लक्षण है, योगी हिल रहा है, पैर हिलाते हुए योग कर रहा है, मस्त योगी। नहीं, ये योग नहीं, ये निष्ठा वाला योग नहीं हो सकता। शरीर को हिलाना और योग करना ये लक्षण नहीं है योगी का। उसी प्रकार से हमारे मुखमंडल फेशियल एक्सप्रेशन में डिस्टिंक्ट चेंजेस आते हैं, या तो एक्सप्रेशंस फ्लैट हो जाते हैं, या तो एक्सप्रेशन में पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव इमोशन बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड होता है, आइदर ऑफ द टू। लेकिन ऐसे ही जनरल एक्सप्रेशन नहीं रह सकता। उसी प्रकार से हमारे श्वासों की गति शांत होना, ये सब स्थूल लक्षण है, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। जो योगी हैं उनके अंदर ये बहुत एक सुंदर सुखद तृप्ति का अनुभव होना, शांति का अनुभव होना, अगर वो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और बाबा के साथ संबंधों का अनुभव कर रहा है तो संबंधों का गहरा सुख, प्रभु प्रेम का गहरा सुख का अनुभव होना, ये लक्षण स्पष्ट रूप से वो खुद महसूस कर सकेगा। और कुछ कुछ लक्षण सामने देखने वाले जो योग के अभ्यासी हैं वो तुरंत देख के समझ पाएंगे कि ये योगयुक्त है या नहीं है। उसके थोड़ा आगे जाएंगे, कुछ योगियों का ये विशेषता है कि वो बहुत स्पष्ट रूप से आवाज, दृश्य या खुशबू योग में रिवाइव कर सकते हैं। अर्थात अगर वो देखे सतयुग का, सोचिए कल्पना कर रहे हैं आप, सतयुग का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, स्वर्णिम दुनिया में आप पहुंच गए हैं, महल है, कितने सुंदर फूलों की बगिया है, उससे आप चल रहे हैं घास के ऊपर, लॉन के ऊपर, और बहुत सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, ये अगर कमेंट्री चल रहा हो, हम लोग ज्यादातर फूल के दृश्य देखते हैं, है ना, और अच्छा फील करते हैं, लेकिन उस टाइम रियली खुशबू का घ्राण आना ये सबको उतना होता नहीं है, नंबर वार होता है। लेकिन गहरा एकाग्रता वाले योगी वैसे ही फील करेंगे जैसे उस समय उनके नाक के सामने कोई एसेंस रखा हुआ हो, इतना ही स्पष्ट रूप से उनको वो खुशबू फील होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलरली इमेज और दृश्य भी इतना स्पष्ट होगा जैसे कि उन्होंने साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से देखा हो, इतना ही स्पष्ट होगा दृश्य जो मेडिटेशन में हम विजुअलाइज करते हैं स्व पुरुषार्थ से। मैं साक्षात्कार का बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि साक्षात्कार योग नहीं है, हम मेडिटेशन का ही बात कर रहे हैं, राजयोग अभ्यास पुरुषार्थ का बात कर रहे हैं। तो इसमें ओल्फैक्टरी अर्थात घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाना उस समय के लिए, ऑडिटरी जो शब्द, जैसा कि वहां चिड़िया चहक रही है तो उसके जो आवाज है वो बहुत स्पष्ट रूप से जैसे कि आपको सुनाई देगा, सतयुग की कोई ऐसी आवाज या कुछ चीजें अगर आप सतयुग के दृश्य को इमर्ज कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ टैक्टाइल फीलिंग्स, जैसे कल बहन जी हम लोग को गुड नाइट योग करा रही थी, वो बहन जी है यहाँ पे गुड नाइट योग कराने वाली बहन, हाँ अच्छा राइट, हाँ तो बाबा बहुत प्यार कर रहे थे माँ बनकर, है ना, तो बाबा जो टच कर रहे हैं हमें, वो टच का फीलिंग एग्जैक्ट फील होगा जैसे कि हमें स्थूल रूप से किसी ने स्पर्श किया। तो इस प्रकार के वो टैक्टाइल फीलिंग्स भी जागृत होना योग में, आपको पूरा पांचों ही इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से वो फील होगा जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको आप उसी टाइम पांचों इंद्रियों से इमर्शन एक्सपीरियंस होना, ये भी एक योग के स्टेज है। उसके बाद जो हम स्वरूप बनना चाहते हैं, जो संकल्प का अभ्यास कर रहे हैं, वो स्वरूप हमारे अंदर योग के उस समय पूर्ण रूप से प्रतिभात हो, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो। अगर हम सतयुगी देवता का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हमारे आदि स्वरूप का इमेजिन कर रहे हैं, और आप कोई देवी या देवता के रूप से खुद को विजुअलाइज कर रहे हैं सतयुग में, आपको देखने वालों को स्पष्ट लगेगा कि आपके एक्सप्रेशन पूरा देव या देवी जैसा है उस समय, बहुत ही स्पष्ट रूप से वो दिखाई देगा। और इसके अलावा ये ब्लू कलर में नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है लेकिन बाबा के बच्चों के अनुभव के आधार से है, कि गहरा योग में रहा हुआ योगी के नजदीक आप जब जाएंगे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, बिना कोई कारण से, कोई कारण की जरूरत नहीं है, आप उनके प्रकंपन से आपको अच्छा फील होना तुरंत शुरू हो जाएगा। क्यों अच्छा लग रहा है, कोई रीजन नहीं है, राइट। तो ये कुछ लक्ष्य। थैंक यू वॉलंटियर भाई, अभी आप योग युक्त होके बैठ सकते हैं नीचे। थैंक्स। सो ये हो गया कुछ इंडिकेटर्स, लेकिन ये इंडिकेटर्स जो हैं, इसको हम ऐसे शब्द से कहेंगे, ये सब लीड इंडिकेटर्स हैं। अर्थात हम जब योग अभ्यास कर रहे हैं, उस योग अभ्यास के दौरान हमारे कुछ लक्षण जो योगी खुद महसूस कर पा रहा है या उन्हें सामने से देखने वाले अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं लक्षण, उसको हम लीड इंडिकेटर्स कहेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, अगर हम योग करने के पश्चात योग से उठकर हमारा गुस्सा वैसा के वैसा ही रहा, हमारी धारणाएं वैसे के वैसे ही रही, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो बहुत अच्छी तरह से एकदम मूर्ति होकर बैठते हैं, तो कोई मानेगा कि ये योग ठीक से करता है? तो योग का मेन रिजल्ट कहां दिखाई देना चाहिए? बिहेवियर में, परिवर्तन में। लेकिन योग कब करते हैं, पहले बिहेवियर है या पहले योग है? योग अभ्यास के आधार से हमारे बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे हम गेहूं चक्की में ले जाते हैं पीसने के लिए, तो अगर अच्छा आटा चाहिए तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है माताएं? आटा साफ होना चाहिए, अच्छा कंकड़ नहीं होना चाहिए, अच्छा पीसते टाइम, पीसते समय, हाँ, और चक्की का जो सेटिंग होता है दो पत्थर घिसने का, उसको कितना मोटा चाहिए, पतला चाहिए, कैसे चाहिए आटा आपको पीसना, वो ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये दो चीज आप किए हैं तो आटा जो निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। लेकिन अगर आप लास्ट में सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं तो होगा? सिर्फ चेकिंग कर रहे नहीं, उसके लिए पहले गेहूं को चेक करना होगा, उसमें कोई कंकड़ दाना तो नहीं है, उसको पहले साफ करना होगा, फिर प्रोसेस को ठीक करना होगा तो आउटपुट ठीक होगा। तो योग में बैठते समय कुछ लक्षण जो है वो ऐसा है कि हम योग में उस समय एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग एकाग्र कर पा रहे हैं नहीं, उसका अंदाजा लग सकता है। बट दैट डज नॉट गारंटी कि इस समय हम एकाग्र कर रहे हैं मतलब हमारे अंदर कितना परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम योग के अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या संकल्पना कर रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है और हम भी हमारे रेफरेंस से उसको समझ रहे हैं। हम ब्रह्मा बाबा के रेफरेंस से समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम हमारे एक्सपीरियंस को रेफरेंस लेके समझ रहे हैं, या तो ज्ञान के लॉजिक के आधार से उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लीड इंडिकेटर्स हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, जो लक्षण हम लोगों ने अभी देखा। लेकिन उसके अलावा परिवर्तन के कुछ बहुत स्पष्ट लक्षण हैं, और वो लक्षण कुछ इस प्रकार का है। पहला लक्षण है हमारे आई मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, आंखें झपकना, इधर उधर देखना, एक मिनट में कितना बार हम आंखें ऐसे ऐसे करते हैं वो थोड़ा शांत हो जाएगा योगी का। और ये लक्षण इनफैक्ट हम चाहेंगे सुशील भाई एक मिनट के लिए जगदीश जी का वो बात आप याद दिलाएं, आप इनफैक्ट उस बात के अनुभवी हैं, बहुत शॉर्ट में चंद शब्दों में।
ओम शांति। मेरे को पालना में एक बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ महीनों मैं चूंकि शक्तिनगर सेंटर से हूं तो जगदीश भाई साहब का भी साथ मिला। तो एक बार दीदी ने उनसे जब मुलाकात के लिए मैंने कहा कि, तो उस समय जो केवल जितनी देर मैंने अभी ये दो लाइनें बोली हैं इतना भी टाइम नहीं हुआ होगा कि मैंने उनसे भाई साहब से कहा, भाई साहब मेरे को योग लगाने में थोड़ा सा मेडिटेशन में कोई टिप दीजिए जो मैं आसानी से कर पाऊं। तो उतनी देर के ऑब्जर्वेंस में उन्होंने गौर कर लिया था कि मेरा जो ब्लिंकिंग रेट है, जो भाई जी ने कहा कि मेरी पलकें बार बार झपक रही हैं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आपका जो आई ब्लिंकिंग है वो कम हो जाए। उन्होंने समझा कि इस स्थूल की उन्होंने इतनी बढ़िया टिप दी। और मैं कंक्लूड करता हूं इस बात को, मैं आज की डेट में उस फील्ड पे रिसर्च भी कर रहा हूं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं आई ट्रैकर। सो आई ट्रैकिंग में मैं किधर देख रहा हूं, कितनी बार पलक झपक रहा हूं, मेरा अटेंशन, जो इन्होंने सेकंड लिखा हुआ है, अटेंशन स्पैन कितना है, वो क्लियर आता है। और ये हमारे विचारों की गति से और विचारों के नंबर से डायरेक्टली रिलेटेड है। ओम शांति।
थैंक यू। आप सभी कहीं ये विचार में नहीं खो जाना कि भाई हमारा कितना आई ब्लिंकिंग है, अभी सब काउंट करने लग गए हैं। नहीं, आप यहाँ देखिए, कोई तो आई बंद कर ली है, झपकने का जरूरत ही नहीं, कुछ देर तो बंद ही रखो। ओके। ये बहुत क्लियर लक्षण है कि योगी जो है, सात्विक संस्कार वाले जो है, उनका आंख भटकना और झपकना दोनों ही बहुत कम होगा। इधर उधर देखना, स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स ऐसे ही कम हो जाएगा। बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस बात का। दूसरा, सस्टेन्ड इंक्रीज इन अटेंशन स्पैन, अर्थात जिसको एक शब्दों में कहें तो कॉन्सेंट्रेशन, उनकी एकाग्रता बहुत क्लियरली स्पष्ट होगा। अटेंशन डेफिसिट दिखाई नहीं देगा उनके अंदर, बहुत क्लियर लक्षण है ये। इंटरेस्ट टू डू योग, यू नहीं है वो, योग है, योग फॉर लॉन्ग टाइम, उनको अपने आप रुचि होगा, बार बार वो योग के लगन में समय निकाल के, कैसे करके भी बार बार खींच के, भाग भाग के बाबा के रूम में जाके वो बैठ जाएंगे, या कहीं पे भी थोड़ा भी चांस मिले वो योग लगाने के लिए अपने आप वो टाइम निकालेंगे, भले खाने का टाइम भी थोड़ा बचा तो भी योग में बैठ जाएंगे, इस प्रकार से वो समय निकालेंगे। ये लक्षण है। मेटीरियलिस्टिक एंटरटेनमेंट पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और आधा घंटा समय मुझे है तो मैं कहां जाऊंगा? हाँ, हम कहां जाएंगे वो हम नहीं पूछ रहे हैं। योगी जो अच्छे योगी हैं वो कहां जाएगा वो आप जानते हैं, वो बाबा के रूम में जाएंगे। हाँ, आप ये नहीं कहना कि मैं कल्चरल प्रोग्राम देखते देखते योग करूंगा। There will be a general state of happiness, सदा प्रसन्न नजर आएंगे, लेकिन साथ साथ उस प्रसन्नता के साथ साथ मैच्योरिटी और गंभीरता, सेरेनिटी उनके अंदर रहेगा। योगी गंभीर होंगे। गंभीर doesn't mean मुस्कुराएंगे, नहीं नहीं। मम्मा की पर्सनैलिटी जो हम लोग वर्णना सुनते हैं, बाबा की जो सुनते हैं, उनके अंदर हैप्पीनेस तो थी ही, लेकिन साथ साथ गंभीरता, रमणीकता। यस, लव एम्पैथी फॉर ऑल, सबके प्रति कल्याण की भावना, स्नेह, ये जनरल रूप से रहेगा, फेवरिज्म नहीं रहेगा। उनका नींद, आहार और बात करना कम होगा योगी का। शायद ही एक आध योगी मिलेगा आपको जो ज्यादा बोलने वाला कोई योगी आप अगर देखे हैं या शास्त्र में पढ़े हैं, अब उनको कथा सुनाना होगा तो ऑफकोर्स बोलेंगे, लेकिन अंतर्मुखता की उनको बहुत रुचि होंगी, क्योंकि योग के साथ अंतर्मुखता, नींद कम होना और आहार कम होना, ज्यादा खाने वाले योगी का लक्षण नहीं है, और कम नींद करने वाले, ये एक जनरल लक्षण है। मतलब ये नहीं फिर हम नींद ही नहीं करें, गीता में भी वर्णन है कि योगी के लक्षण क्या है। हाँ जी, परिमित, लिमिटेड, यस। उसके अलावा और एक क्लियर लक्षण है, योगी के बातचीत में बहुत हाई लेवल के ऑप्टिमिज्म नजर आएगा, आशावाद और सैंग्विन ऑप्टिमिज्म, ये तो होना ही है, स्पष्टता रहेगा, उनका पूर्ण विश्वास रहेगा वो जो अभ्यास कर रहा है, सतयुग आना ही है, अच्छा होना ही है, बहुत स्पष्ट रूप से रहेगा। पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, मैं तो कर रहा हूं, अच्छा ही होना चाहिए, होना चाहिए, होगा शायद, ऐसा नहीं, बहुत सैंग्विन ऑप्टिमिज्म होगा, जिसको फ्लैग्मेटिक व्यक्तित्व कहा जाता है। योगी का ये बहुत लक्षण होगा। जो हम हमारे यज्ञ के सीनियर से बात करते हैं, इस बात का झलक आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और उसके अलावा एक जनरल निर्भयता उनके अंदर है, किसी भी बात में भय नहीं है। कोई बड़ा बीमारी का आप अनाउंसमेंट कर दीजिए तो भी भय नहीं है उनको, उनको भय नहीं है, अनिश्चयता नहीं है, सैंग्विन है, हर चीज हुआ पड़ा है। तो ये निर्भयता वाला करेज है, साहस, साहस की बात नहीं, भय ही नहीं है, निर्भयता, फियरलेसनेस, डजंट हैव फियर एट ऑल, फियर का एलिमेंट ही नहीं है। तो ये बहुत क्लियर लक्षण है योग के मार्ग पे आगे बढ़ने वालों का, जिससे आप योग के इंडिकेशंस ले सकते हैं। उसके अलावा दो और लक्षण है जो खास हम बाबा के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, वो है प्रकृति साथ देगा उनका, जो उनके कुछ एग्जाम्पल से पता चल जाएगा और कुछ घटनाओं से, और वही है कि उनके नजदीक आते ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, अगेन बिना कोई रीजन का, आप उनको पहचानते नहीं है, आपके साथ उनका कोई ऐसे कोई कार्यरत व्यवहार नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नजदीक आते हैं उनके वाइब्रेशंस के कारण आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, जस्ट स्विच ऑन हो जाएगा, आप कैसे भी मूड पे रहिए आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये लक्षण स्पष्ट है, हम सहमत हैं इस लक्षण से, हाथ उठाइए, राइट, ओके। दो मिनट के लिए हम हाँ जी थोड़ा खड़े हो जाएंगे सभी, थोड़ा दो मिनट फ्रेश हो जाएंगे हम सभी। हाँ जी आप कुछ बता दें। नहीं, ये बैठ के योग का ही बात हो रहा है, मतलब गहरा योग अभ्यास, चलते हुए याद का बात नहीं हो रहा है। तीन चार बार गहरा श्वास लेंगे हम, हम ये कॉन्शियसनेस पे रहें कि हम कौन हैं, भ्रुकुटी के बीच बैठे हुए हैं, हाथ थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए पूरा अच्छी तरह से, फुल हाथ जहां तक हो सके स्ट्रेच कीजिए, ऊपर देखिए, हाथ उतार लीजिए और एक बार ऊपर स्ट्रेच करें, हाँ जी हाथ उतार लीजिए, थैंक यू, प्लीज बैठिए। अब तीसरा और लास्ट हिस्सा जो हम ब्राह्मणों के लिए सबसे मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, कि हम हमारे योग का स्टेज को कैसे गहरा कर सकते हैं। तो हमारे योग का गहराई से रिलेटेड हम आपको इस जगह में एक मेथड बताएंगे, और उस मेथड के साथ साथ हमारे संकल्प के दौरान खास मनसा सेवा, मनसा सेवा में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं वह हाथ उठाइए, बहुत अच्छा, थैंक यू। मनसा सेवा को असरदार अगर हम बनाना चाहते हैं तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। हमारे दृश्य जो बनाते हैं मनसा सेवा के दौरान, उस दृश्य का कंटेंट जो है, सोचिए आप कोई हॉस्पिटल को सकाश दे रहे हैं, कभी बनाते हैं ना दृश्य ऐसा, हाँ, कोई बीमार व्यक्ति को सकाश दे रहे हैं, हॉस्पिटल को सकाश दे रहे हैं, तो क्या कल्पना करते हैं, कोई एक बताइए, कोई एक खड़े होके बताइए, कोई पीछे से कोई बताइए, हाँ, मनसा सेवा कर रहे हैं कोई बीमार व्यक्ति को, हाँ जी बहन जी बताइए, जी ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू बहन जी। अभी बहन जी जो एग्जाम्पल दिया उसमें दो हिस्सा है, हम शक्ति दे रहे हैं, वो दृश्य हम बना रहे हैं, साथ साथ वो व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है बाबा के सकाश, उनके अंदर हीलिंग हो रहा है और वो प्रसन्न हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और वो स्वस्थ होते हुए देखकर हमें प्रसन्नता हो रहा है कि हम बाबा की ये सेवा सफलतापूर्वक कर पाए हैं। एक है पहुंचा देना, जैसे पोस्टमैन होता है, भाई हमने शक्ति पहुंचा दिया, आप ही समझ लो बाबा का शक्ति आ गया आपके पास, आप देख लो आपका बीमारी होता है ठीक है या नहीं। दूसरा है हम उस लूप को पूरा कर रहे हैं, बाबा को वापिस आके बता रहे हैं कि बाबा आपका शक्ति उन तक पहुंचा और उन्होंने बहुत अच्छा फील किया, वो हील होते जा रहे हैं, निरोगी बनते जा रहे हैं। राइट नाउ यहां पे ये जो इमेजरी है, इमेजरी के कुछ प्रकार हैं और ये प्रकार हम स्पार्कलर्स योगियों को 100% एक एक अक्षर समझ लेना जरूरी है। पहला प्रकार के जो इमेजरी होता है वो खास स्किल डेवलपमेंट के लिए है, कोई पर्टिकुलर कला, जैसे ड्राइविंग आप सीखना चाहते हैं। अब ड्राइविंग सीखने के लिए सोचिए आपको 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना होता है ड्राइविंग स्कूल में 21 दिन, 7-8, 7-8, 10 किलोमीटर करके हर रोज चलाते हैं। उसके साथ साथ आप अगर मेडिटेशन पे बैठ के उस चीज को विजुअलाइज करते हैं तो आपका स्किल बहुत जल्दी एनहांस हो सकता है। ये बात समझ में आया? राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इमेजरी ऑफ स्किल्स। भाई लोगों को रोटी बनाना है, माताओं से भी सुंदर राउंड रोटी बनाना सीख जाएंगे अगर आप, थोड़ा रोटी बनाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन पे बैठ के रोटी बनाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप ये स्किल को, कोई भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज इमेजरी ऑफ स्ट्रेटेजी रूटीन प्लानिंग। जैसे हॉस्पिटल में जाके मुझे इस प्रकार से सकाश देना है, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति, सातों ही बाबा के ईश्वरीय गुण को लुटाना है हॉस्पिटल के सभी मरीजों पर, इस सो दिस इज अ प्लानिंग, दिस इज अ ड्रिल विच आई हैव प्लान्ड एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इमेजरी, लेकिन यहां पे फीलिंग्स कम है। इस इमेजरी में, सेकेंड टाइप ऑफ इमेजरी में भी फीलिंग्स कम है, हम सिर्फ जाएंगे सकाश उनको देंगे। अब बहन जी जो बताई कि उसके बाद हम उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को हम देख रहे हैं, वो व्यक्ति प्रसन्न हो रहे हैं, और उसके साथ हम थोड़ा एडिशनल जोड़ दिए कि उस प्रसन्नता से मुझे खुशी हो रही है कि हम सफल हुए हैं बाबा की ये सेवा में। ये हो गया तीसरा, इमेजरी ऑफ गोल अचीवमेंट, अर्थात आप जो लक्ष्य को रखे थे वो है लक्ष्य हासिल हो रहा है, और वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, उस इमोशन को विजुअलाइजेशन में फील करना। सरप्राइजिंगली हम बाबा के बच्चे विश्व को सकाश देते हुए बौद्धिक स्तर पर या विजुअल स्तर पर पहुंचकर सकाश देके छोड़ देते हैं, वो सकाश का असर विश्व की आत्माओं पर क्या हो रहा है, उनके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो देखने के लिए हम लोग रुकते नहीं हैं, हम लोग जल्दी जल्दी समेट के आ जाते हैं। अगर हम इस चीज को करेंगे तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा असरदार होगा मनसा सेवा का, बहुत ज्यादा असरदार होगा। चौथा प्रकार है जहां पे कुछ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए स्फूर्ति चाहिए, स्फूर्ति मतलब उमंग उत्साह, और फिजिकल एजिलिटी भी चाहिए। तो खास ये स्पोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, या फास्ट वर्क के लिए एप्लीकेबल है, एयरफोर्स पायलट्स के लिए एप्लीकेबल है, जहां स्फूर्ति बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन है जहां पे स्किल के साथ साथ एजिलिटी अर्थात स्पीड बहुत मायना रखता है, तो वहां ये विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। या बहुत एंग्जाइटी परिस्थिति को जीतने वाला, एंग्जाइटी पैदा करने वाले परिस्थिति के अंदर मैं कैसे शांत रह सकता हूं, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन हो सकता है। और पांचवा है कि हम हमारे स्वरूप, जैसे हम, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुखदेव हूं, इस प्रकार का विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं, ये पांचवा किस्म के इमेजरी है जहां पे हम सेल्फ मास्टरी अर्थात हमारे स्वमान के स्वरूप बनते हैं, जिसका अभ्यास हम बीके ज्यादा करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मनसा सेवा के बारे में इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका रेफरेंस के कुछ लिटरेचर्स भी हैं, पैवियो, हॉल, मैक एंड हॉसेनब्लास, ये चार साइंटिस्ट हैं जो इसको और भी स्पष्ट किए हैं। अब हम लास्ट विषय पर बात कर रहे हैं और ये लास्ट विषय ये है कि योग के गहराई बढ़ाने के एक बहुत सिंपल युक्ति। हम यहाँ पे कुछ कलर्स का इस्तेमाल किए हैं ताकि दूर से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अभी सोचिए हम योग का शुरुआत कर रहे हैं तो योग के शुरुआत के कुछ पल जो होते हैं वहां हमें एकाग्र होना जरूरी है, बहुत 20 नाखूनों का ताकत लगा के हम एकाग्रता को मेंटेन करें शुरुआत के कुछ एक पल, और ये कितना देर, शायद एक मिनट। एक मिनट शुरुआत का योग अभ्यास जब आप बैठ के कर रहे हैं अगर आपने ठीक से किया तो आगे का एक घंटा अच्छी तरह से होगा। पहला एक मिनट अगर आपके हाथ से खिसक गया तो उसको रेस्टोर करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट? क्योंकि ये एक मिनट का समय वो समय है जहां पे आप अपने स्थिति को रेस्टोर कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ मेडिटेशन को आप रेस्टोर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है कि हम जिस लक्ष्य से योग में बैठे हैं, सोचिए कोई स्वमान का अभ्यास, निराकारी स्वरूप का अभ्यास, या फरिश्ता बन के सकाश देने का अभ्यास, कोई संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य से योग कर रहे हैं, जो भी हमारे लक्ष्य से योग में बैठे हैं उसके दिशा पे हम प्रोग्रेस करते हैं। आप जस्ट एग्जैक्टली सोचिए कि एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, सबसे पहले वो एक हाइट पे पहुंचता है और उसके बाद जिस दिशा पर उन्हें पहुंचना है उस दिशा पर वो फ्लाई करता है। तो जमीन से हाइट पर उड़ना ये पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है, ये ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की प्रक्रिया है जहां हम कर्मयोगी अवस्था से गहरा योग अवस्था में हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन ट्रेन्ड योगी के लिए, चार पांच साल जो ज्ञान में चल रहे हैं नियमित रूप से, उनके लिए एक मिनट से ज्यादा ये लगना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं एक सेकेंड, हम लोग शायद उसके नजदीक पहुंचे हैं लेकिन कम से कम एक मिनट तो लगता होगा, एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए अगर ये ट्रेन्ड हो जाएंगे तो। अभी हम बता रहे हैं वो विधि, जो विधि आप बाबा हम बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं और वो ड्रिल किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे आप कोई योग का लक्ष्य लिए उसके बाद धीरे धीरे खुद ही योग युक्त अवस्था से वापिस कर्मयोगी अवस्था पर लौट आइए। आप योग सोचिए, आधा घंटा आपके पास समय है, आप बहुत पावरफुल स्थिति का अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, आप पहले योग का गहराई बढ़ाइए, उस लक्ष्य पर स्थित होइए, फिर धीरे धीरे योग का गहराई कम करके कर्मयोगी अवस्था पर लौट आइए कॉन्शियसली, लेकिन योग को तोड़िए नहीं, वापिस आप लौट आ रहे हैं। यहां तक स्पष्ट है? ओके, इसके बाद एक प्रक्रिया आपको करना है, अपने आप के साथ बात करना है। योग में अपने आप के साथ ही आप बात करते हैं, अपने आप को एफर्मेशन देना है कि हम पहला राउंड योग अभ्यास का पूरा कर रहे हैं और अब हम बाबा दूसरा राउंड शुरुआत कर रहे हैं, और पहला राउंड के भेंट में दूसरा राउंड में मुझे बाबा आप गहरा योग अनुभूति कराओ, पहला राउंड की भेंट में दूसरा राउंड और कम समय पे और ज्यादा गहरा अनुभव कर सकेंगे। So you are giving an affirmation to yourself in this red area which is written as post meditative suggestion. अर्थात पहला राउंड मेडिटेशन के अभ्यास के अंत पे आप अपने आप को संकल्प दे रहे हैं दूसरा राउंड के लिए, ठीक है? तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दूसरा लाल वाला लाइन के पहले जो पर्पल कलर का लाइन है, वो फिर स्टार्टिंग लेवल पे नहीं आ रहा है क्योंकि आप योग अवस्था में ही हैं लेकिन थोड़ा सा योग का गहराई कॉन्शियसली कम कर लिए हैं। इसी प्रकार से ये राउंड वन पूरा हो रहा है और तुरंत आप राउंड टू शुरू कर रहे हैं, राउंड टू ही उसी प्रकार से चलेगा जैसे राउंड वन हुआ, लेकिन आपका बेसल लाइन लिफ्ट हो गया है, अर्थात आपके साधारण योगावस्था जो है, नॉर्मल कंडीशन का योगावस्था, योग युक्त अवस्था जो है, दैट इटसेल्फ हैज गॉट एनहेंस्ड। इसीलिए आपके योग का गहराई इन सेकेंड राउंड इज इंक्रीजिंग मोर देन द फर्स्ट राउंड। ये एक ही बैठक पे आप कर रहे हैं, एक ही बार बैठकर माइंड का ड्रिल कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड पूरा करके यू आर स्टार्टिंग सेकेंड राउंड, और उसी तरीके से सेकेंड राउंड पूरा करके यू आर स्टार्टिंग थर्ड राउंड, हर राउंड पर आपके डेप्थ ऑफ मेडिटेशन इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। जिनों का योग नहीं लगता है ऐसे कंप्लेंट हैं, या जिज्ञासु सेंटर पे आते हैं उनको इस प्रकार से अगर आप योग कराते हैं, उनको तीन बार सेम ड्रिल कराइए, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सेम ड्रिल तीन बार कराइए। लेकिन पहला बार जैसे ही वो पूरा करेगा उनको ये संकल्प दीजिए कि अब दूसरा बार हम शुरू करने जा रहे हैं और दूसरा बार में पहला बार की भेंट में अधिक गहराई में हम जाएंगे। ये हम खुद भी करके देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज। जिसका किसी भी हालत में योग ठीक से नहीं हो पाता उसका भी योग लग सकता है इस विधि का अभ्यास से। दिस इज अ फ्रैक्शनेशन मेथड इसका नाम है। और एक चीज, ये जो दो स्टार देख रहे हैं शुरुआत में और एंड में, ये जगह पे हम बाबा को आवाहन करें योग के शुरुआत में और योग के समापन में बाबा को शुक्रिया अदा करें। हम ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है बाबा को साथ में लेके ही करना, बाबा सदा साथ हैं, लेकिन विशेष कॉन्शियसली बाबा को इमर्ज करें और योग के एंड में बाबा को शुक्रिया अदा करें। हाँ जी, नहीं, एक मिनट लगना चाहिए, किसी का चार पांच मिनट भी लग सकता है। हाँ, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, आप 6 बजे अगर समय को सफल करना चाहते हैं तो उसके थोड़ा पहले से आप अपने आप को संकल्पना दीजिए, थॉट्स दीजिए कि 6 बजे का मेरा योग में मैं बैठूंगा, जैसे ही मैं बैठूंगा मैं उड़ूंगा, मेरा पूरा अटेंशन रहेगा, आज बाबा खूब अच्छा अनुभूति हमें कराने वाला है, मुझे प्रसन्नता का फीलिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव, जैसे पिकनिक में जाने का पहले कैसे होता है, एक फील गुड फैक्टर अंदर चलता रहता ना, पिकनिक है, जाना है जाना है, तो उसी तरीके से वो पॉजिटिव फीलिंग अंदर अंदर चलता रहे। There is no precaution for doing good things. That's what I am saying. There is no precaution. So, जैसे मैं आपको बताया कि आपको मानसिक तैयारी जो करना है वही मैं बता रहा हूं। मानसिक, ये तो स्थूल बातें हो गई, तो मानसिक तैयारी हमें पॉजिटिव वो फीलिंग्स को इमर्ज रखना है। दैट इज द ओनली थिंग विच हैज टू बी डन। हाँ जी, किसके समय? जी, स्वमान पे या कोई विजुअलाइजेशन पे, बाबा का कोई अनुभूति को जो आप करना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही सोचना है, बैठने के बाद नहीं सोचिए योग में। राइट, सो टाइम इज अप, हम लोग 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं हमने, सो लास्ट स्लाइड। हाँ जी, इट कुड बी 1 आवर ऑल्सो, इट कुड बी 5 मिनट्स ऑल्सो, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 15 मिनट का ड्रिल बट जो कर रहे हैं उसको रिपीट कीजिए, और फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन योग से बाहर नहीं आइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एकदम जहां से शुरू किए थे वहां नहीं पहुंचिए, उसके थोड़ा पहले तक आकर फिर से स्टार्ट कीजिए। कर्मयोगी अवस्था पर ऑलमोस्ट लौट आइए, लेकिन एकदम कर्मयोगी अवस्था में जाग नहीं जाइए, योग युक्त ही रहिए, वहां से फिर से शुरू कीजिए गहरे, और आप देखेंगे हर टाइम इंटॉक्सिकेशन बढ़ता जाएगा। जो नशा भाव रहता है ना, योग के बाद एक बोलने का दिल नहीं होता है, वो इंटॉक्सिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, एनहांस होता जाएगा। सो दैट टिप्स, एब्सोल्युटली ब्रदर, दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ माय टॉपिक एज सच नाउ। आई थिंक वी हैव 3 डेज मोर and I think that would get clarified, right? Haan ji, last question, yes. अगर ब्रह्मा बाबा योग लगा रहे हैं तो एक ही राउंड में हो जाएगा, हमारी दादियां लगा रही हैं तो एक ही राउंड में हो जाएगा, तो इसका भाई साहब जिंदगी का कोई फॉर्मूला नहीं है, कितना राउंड में किसका होगा उनका हिसाब किताब, किसी ने बोला कर्मों की गति, हाँ तो उनकी स्थिति क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है। हमारे यहां भी बैठे हैं जो सेकंड में ज्वालामुखी अवस्था में लग सकते हैं योग, गारंटी के साथ योग लगाने वाले भी यहाँ पे 50-60 भाई बहने बैठे होंगे, गारंटी के साथ, मतलब इस स्थिति में टिकना है, दुनिया कुछ भी हो जाए, भूकंप हो जाए, लेकिन हमारा बुद्धि योग हिलेगा नहीं। दैट इज द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। ये बहुत बाप समान स्थिति है, ये तो बहुत बेसिक स्थिति है। एक टिक मन हो जाए, जिस संकल्प पे लगाएं और वो पूर्ण के पूर्ण रूप से हम फील करें, ये बहुत बेसिक स्थिति है। यहाँ 50-60-100 भाई बहने बैठे होंगे जो ऐसे अभ्यास इजीली कर सकेंगे, राइट? तो इट्स पॉसिबल। थैंक यू, थैंक्स बाबा। सभी साथ में कहिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा।